एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा दे। हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे पिता। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर ताकि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चल सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कर ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है हम एक परिवार हैं। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 12 का 49 और 50 से। यह परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यह यीशु मसीह का वचन है, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिताओं को, अपने चेलों को कह रहे थे कि जो लोग उसके स्वर्गीय पिता के बातों को सुनते हैं, उसके इच्छा पर चलते हैं, वही उसके भाई और बहन और माता हैं। प्यारो, आज के अध्ययन करते समय हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। परमेश्वर का प्रेम एक कलीसिया को केवल एक मंडली नहीं बल्कि भाइयों और बहनों की प्रेमपूर्ण संगति कैसे बनाता है। परमेश्वर इस संगति का उपयोग संसार में अपने प्रेम और सत्य को फैलाने के लिए कैसे करते हैं। हम द्वीप नहीं हैं। ईश्वर के परिवार में हम ना तो एक दूसरे से दूर हैं और ना ही एकाकी। हम एक संयुक्त समूह बनाते हैं जो समान आदर्शों और आध्यात्मिक सिद्धांतों से बंधा है। यह एकता हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है और विशेष रूप से अपने मसीह प्रेम के लिए जानी जाती है। ऐसा प्रेम और एकता दुनिया के धर्मनिरपेक्ष समाज से अलग है। आइए हम इसका तुलना करें। धर्मनिरपेक्ष समाज में पिता अक्सर बच्चों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का परिवार में भजन संहिता 27 का 10 कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। धर्मनिरपेक्ष समाज में आध्यात्मिक अनाथ होते हैं, लेकिन यशायाह 41 का 10 में बाइबल कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। उधर अकेलापन और निराशा होती है धर्मनिरपेक्ष समाज में, परंतु बाइबल कहती है यूहन्ना 13 का 35 में परमेश्वर के परिवार में कैसा होता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के परिवार में उनके सदस्यों के बीच प्रेम रहता है। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से आप परमेश्वर के परिवार को उसके प्रेम का एक उपयुक्त उदाहरण बनाने में मदद कर सकेंगे। किन दो शर्तों पर यीशु अपने आत्मिक परिवार की स्थापना करता है, यह हम पाते हैं मत्ती 12 का 49-50 और दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17-18 पदों में। परमेश्वर का परिवार सिर्फ एक सामाजिक क्लब नहीं है प्यारो, जो कभी कभार मौज मस्ती करने के लिए इकट्ठा होता है, ना ही यह सिर्फ एक मंडली है जो हफ्ते में या एक दो बार किसी गिरजाघर में इकट्ठा होती है, बल्कि यह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने में खुशी खुशी शामिल होते हैं। मसीह और उनकी कलीसिया के प्रति हमारे प्रेम का इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं है कि हम अपनी इच्छा के बजाय उनकी इच्छा को चुने। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की वैसे ही हम भी करेंगे। मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा। क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तेरा आत्मा भला है, मुझे धर्म के मार्ग पर ले चल। दाऊद भजनकार कहते हैं भजन संहिता 143 के 10 में। मत्ती 7 का 21 में यीशु हमें बताते हैं कि उनका सच्चा शिष्य होना मात्र एक दिखावा नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा को पूरा करना है। मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करना, इस विश्वास को स्वीकार करना है कि वह वास्तव में मसीहा है, और इसका तात्पर्य यह है कि वक्ता ने शिष्य की भूमिका ग्रहण कर ली है। वह जो करता है वह हम भी करेंगे, अर्थात वह जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करता है। परमेश्वर में विश्वास कम के साथ होना चाहिए, अन्यथा कम केवल एक दिखावा है। यह सच है कि विश्वास यदि कम सहित ना हो तो अकेला होकर मरा हुआ है, कहता है याकूब अपनी पत्री में उसका 2:11 में। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सच्चे और जीवित विश्वास के बिना कम भी मृत है। इब्रानियों 11:6 में हम यह पाते हैं। जो लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, लुका 12:47-48। परंतु जिन्होंने परमेश्वर की वाणी को अपने हृदयों से बोलते सुना है और फिर भी अपनी पसंद के मार्गों पर चलते रहते हैं, उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है, कहता है यूहन्ना 15:22 में, और वे अनुमान के खतरे में हैं। प्यारो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। अपनी परीक्षाओं और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बीच में भी हम अपने प्रेममय पिता के सहायक हाथ को महसूस कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रेम हमारे आध्यात्मिक परिवार के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचता है। यह प्रलोभन, अकेलेपन, विपत्ति और उत्पीड़न के समय में व्यक्तिगत रूप से हम तक पहुंचता है। यह सामूहिक रूप से भी हम तक पहुंचता है जब हम दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उन समयों के लिए हमारे पास क्या आश्वासन है जब उसके प्रेम की वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाते। यूहन्ना 3:16 और 1 और पहला यूहन्ना 4:8 में हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वह जगत से प्रेम करता है और सब लोगों को बुलाता है। वह चाहता है कि सब कोई उसके पास आए और बचाए जाएं। अगर परमेश्वर के परिवार के सदस्य परमेश्वर के बारे में इस सच्चाई को समझते हैं या नहीं समझते हैं तो इससे परमेश्वर के परिवार पर क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क जरूर पड़ेगा भाइयों। अपने प्रेम के कारण परमेश्वर हम पर दावा करता है। भजन संहिता 24:1 में हम पढ़ते हैं, जगत और उसके रहने वाले सब परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ने उन्हें बनाया है। हाँ प्यारो, हम परमेश्वर के हैं। यह अपनेपन का एहसास हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए और अपने रचयिता परमेश्वर पिता और प्रभु के रूप में उस पर निर्भर रहना चाहिए। यह कितना बड़ा सबक है। हमेशा और हर बात में हमें प्यारे प्रभु पर निर्भर रहना है। यीशु हमें बताते हैं कि वह कि मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यह लिखा है यूहन्ना 15:5 में। जो लोग मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा जाता जीवन की परीक्षाओं को अकेले सहने के लिए, बल्कि वह उन्हें स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। वह उन्हें अपने पिता को अपना पिता कहने का आदेश देता है। वे उसके छोटे बच्चे हैं। परमेश्वर के हृदय के प्रिय अत्यंत कोमल अस्थाई बंधनों से उससे बंधे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर हमें बुलाता है, वह हमें अपना बच्चा कहता है, और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर पिता को हमारे पिता कह के पुकारें। उनके प्रति उनकी असीम कोमलता है जो हमारे माता पिता ने हमारी असहायता में हमारे प्रति जो महसूस किया है उससे कहीं अधिक है, क्योंकि ईश्वरीयता मानवता से ऊपर है। हम एक परिवार के सदस्य हैं। प्रेम में एकजुट होने से हमें परिवार की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे को भाई या बहन कह सकते हैं और एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। प्रेरितों के दिनों में यही प्रथा थी, जिसे हम पाते हैं प्रेरितों के काम 1:15-16 पद में, साथ ही दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 में भी हम इसे पाएंगे। मसीह भी हमें भाई बहन कहने में नहीं लजाते। यह लिखा है इब्रानियों 2:1 में, कहता है प्रभु यीशु मसीह भी हम लोगों को भाई और बहन कहता है और कहने के लिए नहीं लजाता है। इब्रानियों 2:1 पद कहता है। मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाए कि हम परमेश्वर को विनती में, प्रार्थना में हमारे पिता पुकार कर संबोधित करें। मसीह और पवित्र आत्मा का संयुक्त उपस्थिति हमारे जीवन में होने से हम परमेश्वर के विशेष सदस्य हो जाते हैं, उसके परिवार के खास सदस्य। हम परमेश्वर पिता में, परमेश्वर पवित्र आत्मा में और परमेश्वर पुत्र में भी भाई बहन हैं। परमेश्वर ने मसीह के क्रूस के द्वारा अपने अनुयायियों के बीच सभी बाधाओं को दूर कर दिया। मसीह में नया जीवन विभाजन के बजाय एकता, घृणा के बजाय प्रेम, स्वार्थ के बजाय सहयोग, अभिमान के बजाय नम्रता लाता है। संक्षेप में, हम मृत्यु से जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कहता है 1 यूहन्ना 3:14 पद में। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में अपना प्रेम उंडेलता है, इसके परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और क्षमा कर सकते हैं। और जब हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के दर्शाए गए प्रेम जैसा प्रेम करते हैं, तो दुनिया के लोग हमें जानेंगे कि हम उसके खास शिष्य हैं। यीशु इसके विषय में कहता है 13:34-35 में, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो जब वे लोग तुम्हारे बीच में मेरे समान प्रेम को देखेंगे। बहुत से स्त्री पुरुष जीवन की यात्रा में अकेलापन महसूस करते हैं। हम में संवेदनशीलता, साथ और सच्चे मानवीय संपर्क की गमजोशी का अभाव है। सचमुच अकेलापन हमारे समय की सबसे आम स्थितियों में से एक है। प्यारो, यह जरूरी नहीं कि किसी के साथ का अभाव हो, बल्कि अलगाव और त्याग का एहसास है। हम लोगों के साथ रहते हैं फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। ईसाइयों में भी यह एक आम समस्या दिखाई दे रही है। अक्सर हम अच्छे कामों और चर्च के लिए स्वयं सेवा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सच्ची संगति और आनंद को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मत्ती 28:20 में, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वह हमारे संग हमेशा रहने का वादा करते हैं। मसीह के इस वादे में हमें अकेलेपन से निपटने का कितना अद्भुत उपाय मिलता है। प्रभु हमेशा, हर दिन, हर पल, बिना किसी रुकावट या अवकाश के हमारे साथ हैं। हम दिन की शुरुआत में, जरूरत की किसी भी क्षण, इस दिव्य संगति को फिर से दोहरा सकते हैं। प्रभु ने अपनी सबसे खूबसूरत प्रतिज्ञाओं में से एक हमें यशाया 41:10 दिए हैं। उसने आपके जीवन में इस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया है, आइए हम इसे देखें। चलिए हम इसे देखते हैं। क्या आप बीमार हैं? यीशु हमारे बिस्तर के पास रहते हैं, कहता है। क्या हम घर से दूर हैं? वह हमारे साथ यात्रा करते हैं। क्या हमने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को खोया है? वह हमें शांति और सांत्वना देते हैं। क्या हमें कोई डर है? वह हमारे पास आते हैं और उसे दूर कर देते हैं। यह प्रतिज्ञा हमें यशाया 41:10 में मिलता है। भजन संहिता 27 का 1 में मिलता है, क्या हम खतरे में हैं या किसी खतरे में आने वाले हैं, वह हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, यह परमेश्वर का वादा है। भजन संहिता 67 का 6 हमें बताता है कि परमेश्वर अकेले को परिवार में रखता है, कोई भी उसके पास आएंगे वह अनाथ नहीं महसूस करेंगे। परमेश्वर हरेक को अपना बच्चा कहकर पुकारता है, बुलाता है। हर सांसारिक परिवार के पास लक्ष्य और उन लक्ष्यों तक पहुंचने की योजनाएं होनी चाहिए। इन लक्ष्यों में परिवार का आकार, बच्चों का भविष्य, घर की शैली, परिवार की आध्यात्मिक समृद्धि आदि शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर के परिवार के अपने लक्ष्य और योजनाएं हैं। हमारे स्वर्ग के पिता के पास स्वयं अपनी कलीसिया और अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं, उसके सदस्यों के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं और उन्हें पूरा करने की योजनाएं भी हैं। उत्पत्ति 12:2-3 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अपना कलीसिया बनाया और उसके वंश को अपना कलीसिया का सदस्य बनाया। पहला पत्रस 2:9 में हम नए नियम में परमेश्वर के लोगों के विषय में नया कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, जाओ सारे जगत को उसके प्रेम के बारे में बतलाओ, उसके सुसमाचार को बतलाओ और जो लोग सुनेंगे उसके संगति में लाओ, ताकि वे लोग भी सीखेंगे और जानेंगे और सब कुछ जान पाएंगे और उसके संगति में रहेंगे और उसके राज्य में वे लोग पाए जाएंगे। परमेश्वर ने शुरू से ही अपने लोगों के लिए अपना मकसद रखा है कि वह हरेक को अपने पास बुला करके अपने संगति में रखे, कि वे अंत में उसके स्वर्गीय राज, अनंत राज में उसके बीच उसके संग रह सके। परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि हैं और वह चाहता है कि वे संसार के नैतिक अंधकार में ज्योति बने। पूरे देश में, कस्बों में, शहरों और गांव में बिखरे हुए वे परमेश्वर के गवाह हैं। वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वह अविश्वासी संसार को अपनी इच्छा का ज्ञान और अपने अनुग्रह के चमत्कारों को अवगत कराएगा। क्या आप परमेश्वर में विश्वास करके उसके विश्वासी और उसके कलीसियाई परिवार के सदस्य होना चाहते हैं? उसके मसीह के अनुयायियों को अपने आप को अपने आसपास के नाशवान संसार से अलग नहीं समझना चाहिए। वे मानवता के महान जाल का एक हिस्सा हैं और स्वर्ग उन्हें पापियों के साथ साथ संतों के भाई के रूप में देखता है। पतित, पथभ्रष्ट और पापी को मसीह का प्रेम गले लगाता है और पतित आत्मा को ऊपर उठाने के लिए किया गया प्रत्येक दयालु कार्य, दया का प्रत्येक कार्य उसके प्रति किया गया माना जाता है। जो लोग उसके विश्वासी हैं, उसकी कलीसिया के सदस्य हैं, उनको परमेश्वर जिम्मेवारी देता है कि वे उसके प्रेम को बांटे और उसके सच्चाई को वह साझा करे, अपने जीवन से दर्शाए कि वे परमेश्वर की तरफ आए, परमेश्वर की तरफ आकर्षित हों। पत्रस अपने लोगों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पहला पत्रस 2:9 में घोषित करता है। पत्रस ने जिन सभी विवरणों के द्वारा परमेश्वर के परिवार को बुलाया है, उनका एक ही उद्देश्य है, मसीह के प्रेम और उसके उद्धार को विभिन्न तरीकों से संप्रेषित करना, कुछ और करना या केवल एक पंथ को मानना, मसीह के सच्चे धर्म को गलत समझना है। नए नियम में प्रेम के लिए दो शब्द हैं, अगापे तथा इससे संबंधित क्रिया अगापाओ, जिसका अर्थ है प्रेम करना, तथा क्रिया फिलियो, जिसका अर्थ है पसंद करना, स्नेह रखना, प्रेम करना। अगापे एक सिद्धांत है और इसे सम्मान और आदर के प्रेम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक ऐसा प्रेम जो मन और बुद्धि की उच्च शक्तियों को सामने लाता है। यह इस प्रकार का प्रेम है जिसे मसीहों को अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा कि मसीह कहते हैं मत्ती 5:44 पद में लिखा है। प्यारो, परमेश्वर पृथ्वी पर एक महान कलीसिया परिवार का पिता है। वह इस परिवार से अनंत प्रेम करता है। इसी प्रेम के कारण हम उस पर निर्भर रह सकते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हुए प्रसन्न रह सकते हैं। उसके द्वारा इस परिवार के सदस्य मसीह में बहने और भाई हैं। आपको भी परमेश्वर बुलाता है उसके प्रेम से उसके परिवार में होने के लिए। आप क्या उसके परिवार में होना चाहते हैं? क्या आप उसके परिवार में होकर उसके सद्गुणों को, उसके प्रेम को दूसरों को जाहिर करना, दूसरों को बांटना चाहते हैं? यदि आपका यह इच्छा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देवे और आपको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए और बहुत आशीष देकर आपको उसके गवाही बनाए। परमेश्वर हम सबों को और आप सबों को विशेषकर बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए। तू हमारा परमेश्वर है, तू महान पिता है। तू अपने लोगों को अपने पास बुलाता है कि वे तेरे प्रेम में रहे और तेरा आशीष पाए, और तू अपने लोगों को तेरा प्रेम का गवाही देने के लिए भी कहता है जो संसार में अभी तक है। पिता परमेश्वर, हमें तेरे प्रेम को जान करके, तेरे प्रेम को अनुभव करके दूसरों को गवाही देने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर और अगुवाई कर। हम सबों को तो आशीष दे पिता, मेरे हरेक श्रोताओं को तो आशीष दे, उनके परिवारों को तो आशीष दे, उन्हें तेरे प्रेम में चला और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर। तो यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।